मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 22 अक्टूबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं इंग्लैंड के फिलोसोफर ऑल्डस हक्सले के एक कथन से शुरू करने जा रहा हूँ। ऑल्डस हक्सले जो बहुत ही स्थापित और बहुत ही प्रख्यात चिंतक माने जाते हैं। देखिए वे क्या कहते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य एक उभयधर्मी प्राणी है। उभयधर्मी का मतलब है कि वो दो तरह के धर्म को मानता है। धर्म जो मैं कह रहा हूं वो रिलीजन को से उनका संबंध नहीं है। धर्म का मतलब है वो दो तरह के विचार रखता है, दो तरह की धारणाएं रखता है, दो तरह के भाव में जीता है, दो तरह की दुनिया में रहता है, या उभयधर्मी यानी कि दो। फिर वो कहते हैं कि एक साथ दो अलग अलग तलों पर जीता है। अब शायद उभयधर्मी शब्द आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा कि वह एक साथ दो अलग अलग तलों पर जीता है, सतह पर रहता है। एक तल पर वह ठोस यथार्थ परक दुनिया को सहता है और झेलता है। दूसरी ओर है उसका मनोजगत, जहां वह तरह तरह के प्रतीकों का सहारा लेता है। उन्हीं प्रतीकों के बल पर कला और विज्ञान की दुनिया में तरह तरह की हलचल होती रहती है। बहुत ही खूबसूरत वाक्य है ये हक्सले जी का। और इनफैक्ट सच पूछे तो इसमें उन्होंने जो व्याख्या की है वो एक प्रकार से हम सब लोगों के जीवन का जो अंदाज है अपनी जिंदगी के बारे में, हम सब जो सोचते हैं, जिस तरह की रचना करते हैं, जिस तरह की यथार्थ की दुनिया को झेलते देखते और सहते हैं, उन सब की बहुत अच्छी व्याख्या सच पूछे तो इस वाक्य में, इन दो वाक्यों में हमें देखने को मिलती है। देखिए वो कह क्या रहे हैं, इसे थोड़ा सा हम आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारी दुनिया है जहां हम जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे घर परिवार के लोग हैं, अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, दूसरों के साथ हमारे संबंध हैं, दूसरों से हम जूझते रहते हैं, प्रेम करते हैं, झगड़े करते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं जिसे आप कह लीजिए कि दुनिया के हापा पधापी में हम लगे हुए हैं। तो ये जो दुनिया है यह यथार्थ दुनिया है, इसे हम देख सकते हैं, इसे हम छू सकते हैं, देख ही रहे हैं, छू ही रहे हैं और लगातार भोग भी रहे हैं। देखिए यहां हक्सले अगर ये बात कह रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि वो कोई शिकायत कर रहे हैं कि हमारी दुनिया बहुत बुरी दुनिया है। नॉट एट ऑल। इसी यथार्थ जगत को आप कह लीजिए कि भारतीय दर्शन में एक प्रकार से माया कहा गया है कि यह संसार है, संसार में लीलाएं होती रहती हैं, हम सब उन लीलाओं के में अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, जिसे आप कह लीजिए कि एक रंगमंच है। तो ये हमारी यथार्थ की दुनिया है, इससे कोई भी व्यक्ति परे नहीं भाग सकता। लेकिन मित्रों जो दूसरा जो हमारा जगत है उसे हक्सले जी ने मनोजगत कहा है, यानी कि मन की बनाई हुई दुनिया, या यूं कह लीजिए कि हमारे अपने मन के द्वारा रची गई दुनिया जिसके ब्रह्मा हम खुद हैं। देखिए बाहर की जो दुनिया है यह हमारी रची हुई दुनिया नहीं है। नो डाउट कि हमारा थोड़ा बहुत तो हस्तक्षेप होता है, ऐसा नहीं है। मैं कौन सा व्यवसाय करूंगा, अपना जीवन यापन कैसे करूंगा, इसमें मेरा अपना निर्णय शामिल है। कौन लोग मेरे मित्र होंगे, मैं कहाँ रहूंगा, मैं किस तरह की जिंदगी जीऊंगा, इसमें भी काफी कुछ हमारा अपना हस्तक्षेप होता है, लेकिन पूरी तरह से हमारे ही अपने कमांड में नहीं होता। उसमें समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपनी तरफ से चुन ही नहीं सकते। हम किस परिवार में जन्म लेंगे हम नहीं चुन सकते। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं भी हैं। लेकिन जो हमारा मनोजगत है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, जो भी हम रच रहे हैं, जो भी हम ध्वस्त कर रहे हैं, वो सब के सब केवल हम कर रहे हैं। उसमें किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन ये जो दुनिया है, ये जो मन की दुनिया है, यह दिखाई नहीं देती। यह कितनी सही हो जाएगी हमको ये भी नहीं मालूम, ये कितना गलत है हम सच पूछे तो ये भी नहीं जानना चाहते। हमें मालूम तो रहता है कि नहीं, मेरे दिमाग ने जो दुनिया रची है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो बहुत सही दुनिया नहीं है। जैसे सपनों की दुनिया को आप ले लीजिए, चाहे अच्छी दुनिया हो या बुरी दुनिया हो, हम सपनों को जीते तो हैं और पता लगा कि आंख खुली और वो सपना गायब हो गया, वो दुनिया गायब हो गई, वो नहीं रहती। लेकिन ये जो हमारे मनोजगत की जो दुनिया है जिसकी चर्चा यहां हक्सले कर रहे हैं, याद रखिए कि ये सपनों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कल्पना जगत में ये बनी रहती है। मौजूद रहती है, और सच पूछे तो हम इसको जीते भी हैं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल झूठ है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमें यथार्थ से दूर ले जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसे जीते हैं, और सच पूछिए तो इसी दुनिया का हम सही तरीके से स्वाद भी लेते हैं। अक्सर मुझे तो कभी कभी ये भी लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मन की दुनिया है यही सच्ची दुनिया है, क्योंकि हम हर समय अपने मन के साथ ही तो रहते हैं, और हमारा मन उस समय कैसा है कैसा नहीं है हम नहीं जानते। अगर वो अच्छा है तो हमारे मन की दुनिया बहुत बेहतर हो जाती है, अगर वो बुरा है तो हमारे मन की दुनिया बहुत बुरी हो जाती है। तो हमारा जो ज़्यादा विचरण है, जो ज़्यादा हमारा रहना होता है, वो अपने मन की दुनिया के साथ ही रहता है। अब आप देखें कि ये जो मन की दुनिया है ये क्या है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि उसको रचने के लिए, उसको बनाने के लिए हम प्रतीकों का सहारा लेते हैं। दोस्तों ये प्रतीक क्या है? जैसे हमने एक स्वर्ग की दुनिया रची कि ठीक है एक स्वर्ग है, मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा, मैं पुण्य करूंगा तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, अब स्वर्ग में मुझे सुख मिलेगा। तो अब आप देखिए कि हमने सुख के लिए प्रतीक चुने हैं, वहां कल्प वृक्ष होगा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो भी इच्छा व्यक्त करेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगा, वहां कल्प वृक्ष होगा, वहां वासंती बयार हर समय बह रही होगी, वहां पारस पत्थर होगा। मतलब ये जो प्रतीक हमने चुने हैं, कल्प वृक्ष, पारस पत्थर, रंभा मेनका और इस तरह के जितने भी प्रतीक हो सकते हैं, ये पता नहीं अस्तित्व में है कि नहीं है, हमारी दुनिया ने इनकी कल्पना की है। कल्पना करके ये नहीं कि हमने इनको छोड़ दिया। आप देखिए कि ट्रेडिशन से पता नहीं कितने जनरेशन टू जनरेशन वो चले आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें सुख भी पहुंचाते हैं। देखिए जो बाहरी दुनिया है, जो यथार्थ दुनिया है, ये तो तपती हुई दुनिया है, इसकी यात्रा तो ऐसे लगती है ज्यादातर समय में जैसे कि आप रेगिस्तान पर नंगे पांव चल रहे हो और ऊपर सूरज भी चमचमा रहा हो, उस तरह की यात्रा है। अब सवाल यह है कि दूर दराज तक कोई आपको नखलिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो पानी का स्रोत सोता दिखाई दे रहा है, और ना आपको कोई हरियाली दिखाई दे रही है, तो अब आप क्या करेंगे? लेकिन आपको यात्रा जारी रखनी है। तो दोस्तों हमारी जो कल्पना की दुनिया है, हमारा जो मनोजगत है, ऐसी ही यात्राओं को जारी रखने में हमें ताकत देता है, हमारे साथ चलता है। हमें लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो वो सरोवर होगा, कहीं ना कहीं तो वो हरियाली हमें दिखेगी, और सच पूछिए तो वो कल्पना की दुनिया में हम बसा करके और अपनी इस यात्रा को जारी रखते हैं। तो उन्होंने दोस्तों ये बहुत खूबसूरत बात कही है, और फिर आगे वो कहते हैं कि यहीं से विज्ञान और कला का जन्म होता है। देखिए हम कल्पनाएं करते हैं, जो कला और विज्ञान क्या है, हालांकि कला तो पूरी तरह से एक क्रिएटिविटी ही है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि शायद विज्ञान का कला से कोई संबंध नहीं, विज्ञान भी अपने आप में एक कला ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो कला की कला है वो अभी टेस्टेड नहीं है, उसका अभी परीक्षण नहीं हुआ है, केवल वो कल्पना है कि ऐसा हो सकता है। और जब कला की यह कल्पना सत्य में परिवर्तित हो जाती है तो वही विज्ञान हो जाता है। आप देखिए कि हमारे सामने आज जितने भी आविष्कार, चाहे वो मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, किसी समय किसी ने कोई कल्पना ही की होगी कि ऐसा हमारे हाथ में एक यंत्र हो कि हम साहब 10,000 किलोमीटर न्यूयॉर्क में बैठे व्यक्ति से बात कर सकें, तुरंत बात कर सकें, बात करते समय उसका चेहरा भी देख सकें, अपना संदेश पहुंचा सकें। ये सब किसी ने कल्पना की होगी, तो कल्पना गलत तो नहीं थी। जब वो यथार्थ में कन्वर्ट हो गया तो वो विज्ञान हो गया। तो दोस्तों इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम प्रतीकों के बल पर कला और विज्ञान की दुनिया में तरह तरह की हलचलें पैदा करते रहते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का कुल मतलब यह है कि आप मनोजगत को अस्वीकार मत कीजिए, उसे तिरस्कृत मत कीजिए, वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और सच पूछे तो बहुत अनिवार्य हिस्सा है। तो फ्रेंड्स आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।